सुनो कहानी की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मैक्सिम गोर्की की कहानी वह लड़का। यह छोटी सी कहानी सुनाना काफी कठिन होगा, इतनी सीधी सादी है यह। जब मैं अभी छोटा ही था तो गर्मियों और वसंत के दिनों में रविवार को अपनी गली के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और उन्हें खेतों के पार जंगलों में ले जाता था। इन पंछियों की तरह चहकते छोटे बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना मुझे अच्छा लगता था। बच्चों को भी नगर की धूल और भीड़ भरे गलियों से दूर जाना अच्छा लगता था। उनकी माएँ उन्हें रोटियां दे देती थी और मैं कुछ मीठी गोलियां खरीद लेता था, क्वास की एक बोतल भर लेता और फिर किसी गडरिए की तरह भेड़ों के बेपरवाह मेमनों के पीछे पीछे चलता जाता शहर के बीच खेतों के पार हरे भरे जंगलों की ओर, जिसे वसंत ने अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजा दिया होता। आमतौर पर हम सुबह सुबह ही शहर के बाहर निकल जाते जबकि चर्च की घंटियां बज रही होती और बच्चों के कोमल पांव की जमीन पर पड़ने से धूल उड़ रही होती। दोपहर के वक्त जब दिन की गर्मी अपने शिखर पर होती तो खेलते खेलते थक कर मेरे मित्र जंगल के एक कोने में इकट्ठे हो जाते। तब खाना खा लेने के बाद छोटे बच्चे घास पर ही सो जाते और झाड़ियों की छांव में, जबकि बड़े बच्चे मेरे चारों ओर घिराते और मुझे कोई कहानी सुनाने के लिए कहते। मैं कहानियां सुनाने लगता और उसी तेजी से बतियाता जिससे मेरे दोस्त और जवानी के काल्पनिक आत्मविश्वास और जिंदगी के मामूली ज्ञान के हास्यास्पद गर्व के बावजूद मैं अक्सर अपने आप को विद्वानों से घिरा हुआ किसी 20 वर्षीय बच्चे सा महसूस करता। हमारे ऊपर अनंत आकाश फैला है, सामने है जंगल की विविधता, एक जबरदस्त खामोशी में लिपटी हुई हवा का कोई झोंका खड़खड़ाता हुआ पास से निकल जाता है, कोई फुसफुसाहट तेजी से गुजर जाती है, जंगल की सुवासित परछाइयाँ कांपती हैं और एक बार फिर एक अनुपम खामोशी आत्मा में भर जाती है। आकाश के नीले विस्तार में श्वेत बादल धीरे धीरे तैर रहे हैं, सूरज की रोशनी से तपी धरती से देखने पर आसमान बेहद शीतल दिखाई देता और पिघलते हुए बादलों को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे चारों ओर हैं छोटे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे जिन्हें जिंदगी के सभी गम और खुशियां जानने के लिए मैं बुला लाया हूँ। वे थे मेरे अच्छे दिन, वे ही थी असली दावतें और जिंदगी के अंधेरों से ग्रसित मेरी आत्मा जो बच्चों के ख्यालों और अनुभूतियों की स्पष्ट विद्वता में नहाकर रोज तरोताजा हो उठती थी। एक दिन जब बच्चों की भीड़ के साथ शहर से निकलकर मैं खेत में पहुंचा तो हमें एक अजीब आदमी मिला, एक अजनबी, एक छोटा सा यहूदी, नंगे पांव, फटी कमीज, काली भ्रगुटियाँ, दुबला शरीर और मेमनों से घुंघराले बाल। वह किसी वजह से दुखी था और लग रहा था कि वह अब तक रोता रहा है। उसकी बेजान काली आंखें सूजी हुई और लाल थी, जो उसके भूख से नीले पड़े चेहरे पर काफ़ी तीखी लग रही थी। बच्चों की भीड़ के बीच से होता हुआ वह गली के बीचों बीच रुक गया। उसने अपने पाँव को सुबह की ठंडी धूल में दृढ़ता से जमा दिया और सुदृढ़ चेहरे पर उसके काले होंठ भय से खुल गए। अगले ही क्षण एक छलांग में वह फुटपाथ पर खड़ा था। उसे पकड़ लो, सभी बच्चे एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। नन्हा यहूदी, नन्हे यहूदी को पकड़ लो, नन्हा यहूदी पकड़ो। मुझे उम्मीद थी कि वह भाग खड़ा होगा। उसकी दुबली और बड़ी आंखों वाले चेहरे पर भय की मुद्रा अंकित थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वह हंसी उड़ाने वालों की भीड़ के शोर के बीच खड़ा था। वह पांव उठा उठा कर अपने आप को जैसे ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कंधे राह की बाड़ पर टिका दिए और हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया और तब अचानक ही वह बड़ी शांत और साफ तीखी आवाज में बोला, मैं तुम लोगों को एक खेल दिखाऊं। पहले तो मैं सोचने लगा कि यह उसका आत्मरक्षा का कोई तरीका रहा होगा। बच्चे उसकी बात में रुचि लेने लगे और उससे दूर हट गए। केवल बड़ी उम्र के और कुछ अधिक जंगली किस्म के लड़के ही उसकी ओर शंका और अविश्वास से देखते रहे। हमारी गली के दूसरे लड़के दूसरी गलियों के लड़कों से झगड़े हुए थे। उनका पक्का विश्वास था कि वे दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और वे दूसरों की योग्यता की ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं थे। पर छोटे बच्चों के लिए यह मामला एकदम सीधा साधा था। दिखाओ दिखाओ, जरूर दिखाओ, खेल दिखाओ। कौन सा खेल दिखाओगे? वह खूबसूरत दुबला पतला लड़का बाढ़ से परे हट गया। उसने अपने छोटे से शरीर को पीछे की ओर झुकाया, अपनी उंगलियों से जमीन को छुआ और अपनी टांगों को ऊपर की ओर उछालकर हाथों के बल वह खड़ा हो गया। तब वह घूमने लगा जैसे कोई लपट उसे झुलसा रही हो। वह अपनी बाहों और टांगों से खेल दिखाता रहा। उसकी कमीज और पैंट के छेदों से उसके दुबले पतले शरीर की भूरी खाल साफ दिखाई दे रही थी। कंधे, घुटने और कोहनियां तो पूरी तरह से कमीज से बाहर निकल रही थी। लगता था अगर एक बार भी झुका तो ये पतली हड्डियां चटक कर टूट जाएंगी। उसका पसीना चूने लगा। पीठ पर से उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई। हर खेल के बाद वह बच्चों की आंखों में बनावटी निर्जीव मुस्कुराहट लिए हुए झांक कर देख रहा था। उसकी चमक रहित काली आंखों का फैलाव अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे उनमें पीड़ा ही पीड़ा भरी थी और पीड़ा ही झलक रही थी। वे अजीब ही ढंग से फड़फड़ाती थी और उसकी नज़र में एक ऐसा तनाव था जो बच्चों की नज़र में कभी नहीं होता। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर उसे उत्साहित कर रहे थे, कई एक तो उसकी नकल भी करने लगे थे। अचानक ये मनोरंजन क्षण खत्म हो गए। लड़का अपनी कलाबाजी छोड़कर खड़ा हो गया और किसी अनुभवी कलाकार सी नज़र से बच्चों की ओर देखने लगा। अपना दुबला सा हाथ आगे फैलाकर वह बोला, अब मुझे कुछ दो। वे सब खामोश थे। किसी ने पूछा, पैसे? हाँ, लड़के ने कहा। यह अच्छी रही, पैसों के लिए ही करना था तो हम भी ऐसा कर सकते थे। लड़के हंसते हुए और गालियां बकते हुए खेतों की ओर दौड़ने लगे। दरअसल उनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं थे और मेरे पास केवल 7 कोपे थे। मैंने 2 सिक्के उसकी धूल भरी हथेलियों पर रख दिए। लड़की ने उन्हें अपनी उंगलियों से छुआ और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। वह जाने को मुड़ा तो मैंने देखा कि उसकी कमीज की पीठ पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। रुको, वह रुक गया। वह रुका और मुड़ा। उसने मेरी ओर ध्यान से देखा और बड़ी शांत आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, वह पीठ पर? ईस्टर के मौके पर एक मेले में ट्रपीज करते हुए हम गिर पड़े थे। फिर हम पिता अभी तक चारपाई पर ही पड़े हैं और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कमीज उठाकर देखा। पीठ की खाल पर बाएं कंधे से लेकर जांघ तक एक काला जख्म काला निशान फैला हुआ था, जिस पर मोटी सख्त पपड़ी जम चुकी थी और अभी अभी खेल दिखाते समय वह पपड़ी फट गई थी और वहां से गहरा लाल खून रिस रहा था। अरे, अब दर्द नहीं होता? तुम्हें दर्द नहीं होता? मैंने पूछा। उसने कहा कि अब दर्द नहीं होता। मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब दर्द नहीं होता, बस थोड़ी सी खुजली होती है। और बड़ी बहादुरी से, जैसे कोई हीरो ही ऐसा कर सकता है, उसने मेरी आंखों में झांका और किसी बुजुर्ग किसी गंभीर आवाज में बोला, तुम क्या सोचते हो कि अभी मैं अपने लिए काम कर रहा था? कसम से नहीं, मेरे पिता, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है और मेरे पिता बुरी तरह जख्मी हैं, इसलिए एक को तो काम करना ही पड़ेगा। फिर हम यहूदी हैं ना, हर आदमी हम पर हंसता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अलविदा। वो मुस्कुराते हुए काफ़ी खुश खुश बात करता रहा और तब अपने घुंघराले बालों वाले सिर को झटका देकर अभिवादन करते हुए वह चला गया। उन खुले दरवाजों वाले घरों के पार जो अपनी कांच की मारक उदासीनता से भरी आंखों से उसे घूर रहे थे। ये बातें कितनी साधारण और सीधी है ना, लेकिन अपने कठिनाई के दिनों में मैंने अक्सर उस लड़के के साहस को याद किया है और बड़ी कृतज्ञता से भर कर याद किया है। धन्यवाद। नमस्कार।